ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 15 सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। इस अध्याय के आज 22 नंबर श्लोक। असंग क्लपात जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थ अनर्थ इच्छया लोभम भयम् तत्त्व असमर्शनात्। असंकल्पात् जयेत् कामम् क्रोधम् काम विवर्जनात् अर्थ अनर्थ इच्छया लोभम् भयम् तत्त्व अवमर्शनात्। असंकल्पात् जयेत् कामम् क्रोधम् काम विवर्जनात् अर्थनर्थ इच्छया लोभम् भयम् तत्त्व अवमर्शनात्। असंकल्पात् जयेत् कामम् क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थनर्थ इच्छया लोभम् भयम् तत्त्व अवमर्शनात्। और कोई माताएं कोई असंकल्पा जये कामम क्रोध काम विवर अर्थ अनर्थ इच्छया लोभम भयम तत्त्ववशना शब्दार्थ असंकल्पात संकल्प से जयेत जीते कामम काम इच्छाओं को क्रोधम क्रोध को काम विवर्जनात इंद्रिय इच्छा के विषय को त्याग देने से अर्थ धन संग्रह अनर्थ दुख का कारण इच्छया मानने से लोभम लोभ को भयम भय को तत्व सत्य अवमर्शनात् विचार करने से अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के काम पूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इसी प्रकार ईर्षा त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ को परित्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। वे दोहराइए संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के काम पूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्षा त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोष पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सुझाया कि है कि किस तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई भी मनुष्य स्त्रियों के विषय में सोचना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस तरह सोचना स्वाभाविक है। सड़क पर चलते हुए भी उसे अनेक स्त्रियां देखेंगी, किंतु यदि कोई स्त्री के साथ न रहने का संकल्प कर ले तो वह स्त्री को देखकर भी कामुक नहीं होगा। यदि कोई मैथुन न करने का निर्णय व निश्चय कर ले तो वह विषय वासनाओं पर स्वतः विजय प्राप्त कर लेगा। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई भूखा भी हो किंतु यदि वह किसी दिन उपवास करने का संकल्प कर ले तो वह भूख प्यास की बाधाओं पर स्वाभाविक ही विजय प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई संकल्प कर ले कि वह किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा तो वह सहज ही क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार वह धन संचय करने की इच्छा को त्याग सकता है। मात्र यदि वह इतना ही सोच ले कि अपने पास आए धन की रक्षा करना कितना कठिन है, यदि किसी के पास प्रचुर नगद धन रहता है तो वह उसे ठीक से संभालने के विषय में चिंतित रहता है। इसी तरह यदि कोई धन संचय के अवगुण की विवेचना करें तो वह स्वभावतः बिना कठिनाई के अपना व्यवसाय छोड़ सकता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परीजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। असंकल्पात् जयेत् कामं क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थ अनर्थ इच्छया लोभं भयं तत्तो अवमर्शनात्। संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की कामपूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्षा त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए। सत्य की विवेचना करके भय का त्याग कर देना चाहिए। भजन में जो ऐसे अनर्थ है काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य जो छह रिपु है वा शत्रु है यहां पर विशेष रूप में काम क्रोध लोभ और वो कैसे जय करना है वा भय को भी कैसे जय करना है जब तो इसी के उपाय स्वयं नारद मुनि ने कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी वो सुंदर इसी श्लोक के ऊपर अपना टीका लिखें। सबसे पहले कहते कि असंकल्पात जयत कामम, संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की काम इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। संभव है, भगवान गीता में कहते कि आवृत ज्ञान मेतेन ज्ञानीना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्कृण न लेना चाहिए। ये काम व लस्टी डिजायर सभी समय हमारे हृदय में ये दहकता रहता है। यहां तक बड़े बड़े ज्ञानियों की भी ज्ञान को भी ये अपहरण कर लेता है। लेकिन फिर भी नारद मुनि कहते कि संकल्प पूर्वक योजना बनाकर इससे बच सकते हैं। यदि कोई संकल्प ले लिया मैं कैसे संकल्प लेने का, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि स्त्रियां तो कहीं भी देखने मिलेंगे, जो पुरुष है वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री कहीं भी देखा है, रास्ता में कहीं जाता चलता होता तो वहां भी स्त्रियां आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यदि कोई संकल्प ले लिया मैं स्त्रियों के साथ में कोई संपर्क नहीं रखूंगा तो फिर वो उसको ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। स्त्रियों के संकल्प ले लिया, कौन संकल्प लिया था ऐसा कोई उदाहरण है? भीष्मदेव, प्रभु जी कहे भीष्मदेव संकल्प लिया मैं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा, चाहे अम्बा ने कितने भी प्रयास कर ले भीष्मदेव के ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए, वो अपने उनके व्रत को तोड़ने के लिए, लेकिन वो संकल्प कर लिए थे, पिताजी को वचन दिए थे मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, बस उनकी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका, वो पूरा संकल्प लिए। तो इसी प्रकार कोई भी कार्य करने के पहले हमको संकल्प यदि कोई पूरे दृढ़ निष्ठा के साथ ये संकल्प कर लिया, मैं कभी भी ये जिंदगी में स्त्रियों के साथ संपर्क नहीं रखूंगा, तो फिर वो काम को जीत सकता है संकल्प ले करके काम को। लष्टी जी कई उदाहरण, बहुत उदाहरण है। ये विषय कौन थे? बिलोमंगल ठाकुर। उन्हें असक्त था किससे? चिंतामणि वैश्य के प्रति। लेकिन ये वैश्य ने इनको धक्का मणि के निकाल दिया, चिंतामणि ने उनको। तो फिर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस जीवन में और स्त्रियों के साथ संपर्क नहीं रखूंगा। जैसे ही चिंतामणि के प्रति मेरी आसक्ति था, ऐसे ही आसक्ति मैं किसी के प्रति बनाऊंगा? कृष्णपति बनाऊंगा। संकल्प लेकर घर बार छोड़ के चल दिए वृंदावन के मार्ग पर। यदि कभी कभी हम संकल्प लेने पर भी इतने आसान नहीं है इसको पालन करना, तो संकल्प लेकर निकल गए थे, फिर रास्ते में देखे दूसरे स्त्री को, देखे कि मार्ग पर एक तालाब के किनारे बैठे थे, तो वहां पर भी एक स्त्री ने, युवती स्त्री ने स्नान करने के लिए आई थी। फिर वो स्नान करते हुए उसके शरीर को देखकर फिर उनके मन में वो जो लष्टी डिजायर, उनका पूर्व जो पहले जो अभ्यास था चिंतामणि के साथ उनके संपर्क, फिर उद्रेक हो गया लष्टी डिजायर, फिर उसके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन फिर संकल्प लिए थे, फिर बात सुना, अरे मैं संकल्प लिया हूं स्त्रियों के साथ संपर्क नहीं, आज क्या हो रहा है ये लष्टी डिजायर को त्यागने के लिए। लेकिन फिर भी उसी इसका बेशर्म होकर और स्त्री का पीछा पीछा करके उसके घर तक गए, घर में घुस गई भयभीत होकर स्त्री ने, जो तो वो लेकिन विवाहित स्त्री थी, उसके पति ने बात में आए घर में, और ये वो दर्जे के सामने बैठी हुए थे घर के सब, तो बेचारा जो उसके पति है उस स्त्री का, तो आगे पूछा कि ये कौन है, नया आगंतुक कौन है बैठे हमारे घर के सामने? तो उनके स्त्री ने सारे कहा, ये लग रहा है कि कोई कामुक पुरुष है, मुझे स्नान करते हुए तालाब में देखकर मेरे पीछा ये चलते रहा। तो उन्होंने भी आगे पूछे, भाई क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो आप, अतिथि? लेकिन वो सोचे कि हमारा अतिथि है, कोई गृहस्थ के घर में बिना इन्वाइटेशन बिना निमंत्रण में यदि प्रवेश का आ जाता है तो उसको अतिथि कहते। तो पूछे, भाई किस लिए, क्या तुम्हारी इच्छा है? तो उन्होंने भी बेशरम होकर कहे, क्या कहे, ये घर में जो प्रवेश किया जो युवती स्त्री है उसको देखकर मेरे मन में लष्टी डिजायर उद्रेक हुई, मैं इसको उपभोग करना चाहता हूं, तो आप क्या करते? दंडा लेकर वही उसका पिटाई हो जाता अच्छा से। लेकिन ये ब्राह्मण ने सोचे कि हो सकता है कि भगवान की परीक्षा है, मैंने तो कभी किसी स्त्री के प्रति ऐसे ही बुरे नजर नहीं किया, मैं किसी की सत्यत्व तो नष्ट करने दूसरे की पत्नी का मातृवत परदारेषु, चाणक्य पंडित कहते। तो इसलिए उन्होंने उसमें सहमत हुआ और अपने स्त्री को भी कहा कि तुम श्रृंगार होकर जाओ एकांत रूम में, एकले कमरे में जाओ और उनकी जो इच्छा है इसको पूर्ण करना। तो सही सही हुआ। लेकिन ये बिलोमंगल जब गए कमरे में तो उनका संकल्प याद आ गया, मैं संकल्प किया हूं कि ये स्त्रियों के साथ कभी भी मैं लष्टी डिजायर के साथ किसी स्त्री के साथ संभोगरत कभी भी और भविष्य में नहीं होगा, पहले संकल्प किया। तुरंत जब यह याद आया कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं स्वयं अपना संकल्प को तोड़ने जा रहा हूं, कहेगी दो दो आपका सिर में जो दो पीन है कंटा जो रखे हो तो दोनों दे, मुझे दे दो। उसको समझ में नहीं है ये स्त्री क्या किया, क्यों मांग रहे, लेकिन लेकर क्या किए, दोनों आंख नष्ट कर दी। आंख रहेगा ना स्त्रियों को देखेगा, इसका मतलब नहीं कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकता कोई नहीं, ये ऐसे करना इतने आसान नहीं है, बात नहीं करने के लिए भी कोई अनुमोदन नहीं कर सकता। लेकिन बिलोमंगल ठाकुर ने किया, दोनों आंख नष्ट कर, फिर स्त्री देखेगा नहीं, स्त्री देखेगा ना काम और लष्टी डिजायर जागृत होगा मन में, क्योंकि स्त्रियों को देखने से आज जो लष्टी डिजायर नहीं आएगी बहुत का ये इतना आसान नहीं है। क्यों नारद मुनि कहते हैं कि प्रमदा नाम ही बन्नी घीत कुंभ मिवपुवान, प्रमदा जो सुंदर स्त्री वो कैसे हैं, आग जैसे हैं, और जो घीत कुंभ एक घी का घड़ा बा घी का पात्र कौन है, एक पुरुष। दूर में रहने से कुछ नहीं होता, जो घी अलग रहा आग अलग रहा तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब दोनों को पास में लाओगे क्या होगा, घी पिघलेगा, चाहे ठंडी का मौसम में कहीं भी इसको रखो, जैसे हिल स्टेशन में कहीं शिमला में दार्जिलिंग कहीं रखो, जहां पर पूरा बर्फ जैसे बर्फ गिरता है, तो घी वहां पर ऐसे ऐसे बढ़ जाता है, लगता है कि उसमें नाखून में खर्च डालने से भी डालने वाला नहीं है, पूरा पत्थर जैसे हो चुका है। लेकिन फिर भी यदि उसके पास में क्या लाया जाए, आग के पास उसको रखा जाए तो पिघलेगा। इसलिए स्त्रियों से बचना चाहिए, जिसको ब्रह्मचर्य पालन करने की इच्छा है तो सन्निकट में नहीं आना चाहिए। इसलिए आठ प्रकार के उपदेश है, किन के लिए? ब्रह्मचर्य के लिए है। ब्रह्मचर्य कहा गया कि स्त्रियों की ज्यादा सन्निकट में नहीं जाना है। दर्शन स्पर्शन है, गुह्य भाषणम है, गुह्य एकावन से बात करना है, स्त्रियों को देखना, प्लान बनाना कैसे इनको पास में जाना, संकल्प कर संकल्प। उस श्लोक को ने याद रखा, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री में श्लोक आता है कि कैसे बचना है स्त्रियों से। आठ प्रकार की संकल्प लेना चाहिए, किसको? ब्रह्मचारी को, कि मैं स्त्रियों को सन्निकट में, ज्यादा सन्निकट में नहीं जाऊंगा, इनको देखूंगा नहीं है, विशेष रूप में उनके मुख को दर्शन नहीं करूंगा, मुख की पराक्षण बा दृष्टिपात नहीं करूंगा। लक्ष्मण ने ब्रह्मचारी रहा 12 साल, नष्टिक ब्रह्मचारी रहा, जो इंद्रजीत को वध करने के लिए ये कंडीशन था, जो 12 साल ब्रह्मचारी नष्टिक ब्रह्मचारी रहा तो मार सकता है इसको। बड़ा चिंता आ गया, कौन है ऐसा व्यक्ति? तो लक्ष्मण ने कहा मैं मारूंगा। अरे तुम कैसे नष्टिक ब्रह्मचारी रहा? तो सीता के साथ, रामचंद्र सीता के साथ था। कहा कि मैंने कभी भी सीता जी को मुख को क्षण नहीं किया, कहां देखता था? चरण को देखता था। तो इसे कर ब्रह्मचारी को कहा गया कि यदि वो अपने संकल्प को दृढ़ करें, आठ प्रकार के संकल्प कहा गया लेना चाहिए ब्रह्मचारी को स्त्री से बचने के लिए, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, नैष्टिक ब्रह्मचारी रहने की जगह है। तो इसमें से श्लोक भी याद नहीं आ रहा है, स्मरणम कीर्तनम केली है, क्षणम गुहे भाषणम, इसे स्मरणम स्त्रियों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी जो है तो स्त्रियों के बारे में नहीं सोचना, माता जी कितनी अच्छी है, तो आपका काम नहीं है इसके स्त्रियों को जजमेंट करना, वो अच्छा है कि बुरे हैं, है? ये सब जजमेंट करना, स्मरण स्त्रियों के स्मरण नहीं करना। किसके स्मरण करना? कृष्ण के स्मरण। जब कृष्ण के स्मरण नहीं करो फिर स्त्रियों के स्मरण करोगे, ब्रह्मचारी का ये है। इसलिए कृष्ण के स्मरण करो, भगवान के बारे में चिंतन करो, है? लेकिन यदि ब्रह्मचारी स्त्रियों की चिंतन करेगा स्मरणम, फिर बाद में क्या करेगा? कीर्तन करेगा, उसकी गुणगान करेगी, है? वो माताजी बहुत अच्छी, देखो डेली मंगल आरती आती है, डेली भागवत कक्षा में बैठती है, फिर ये चर्चा करते करते फिर स्मरणम कीर्तनम केली, केली का अर्थ मजाक करना स्त्रियों से, है? दोनों ब्रह्मचारी था, एक ब्रह्मचारी की शादी हो गया, वो गृहस्थ बन गया, तो फिर तो उसका जो पत्नी को वो सोचे कि भाभी बन गया ये मेरा, है? भाभी जी कैसे हैं? ठीक है। ये सब मजाक करने का ब्रह्मचारी का काम नहीं है, स्त्रियों के साथ में मजाक करना है, केली मजाक करना, मजाक करी बात करना, भाई भैया कैसे हैं, ये कैसे, वो फालतू बात स्त्रियों के साथ नहीं करना। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम, उनको देखना डायरेक्टली, काम लोलुप होकर स्त्री के मुख को देखना। अब दृष्टि क्यों मुख में आ जाएगी डालता है और कहीं, क्योंकि अब मन में लस्ट डिजायर है, इसलिए स्त्री के मुख में नजर डाल जाता है सीधे, नहीं चाहने पर डालता है। तो इसलिए प्रेक्षणम, इनको देखना नहीं चाहिए स्त्रियों को डायरेक्ट। प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, एकांत में स्त्री के साथ बातचीत करना, इसीलिए महाप्रभु ने रिजेक्ट किया, किसको? छोटा दस को रिजेक्ट किया, एकांत में स्त्रियों के साथ बातचीत करना नहीं, बड़ा अपना दुख सुख उनके साथ नहीं बताने की बातचीत नहीं, ब्रह्मचारी को यानी कि माता किसी प्रॉब्लम आ गया, समस्या हो गया, उसका सलाह कैसे करना स्त्रियों से, तो बाई चांस आपके मन में थोड़ा लस्ट डिजायर ज्यादा हो रहा है, आप जब किसी स्त्री से सलाह करोगे, चाहे माता जी है, ज्यादा उम्र में भी क्यों ना हो, बातचीत, वो बातचीत करने से आस्ते आस्ते फिर आपकी सलाह दूसरे प्रकार की संबंध शुरू हो जाए, फिर वो कहेगी ठीक है बेटा तुम्हारे लिए मैं देखता हूं, व्यवस्था करता हूं। गुह्य भाषण प्रेक्षणम गुह्य भाषणम और अध्यवस्याय संक, मैंने ऐसे ही प्लान करना, आस्ते आस्ते स्त्रियों के साथ बातचीत करना, फिर आस्ते आस्ते फिर अंत में क्या हो जाता, फिर आप सेक्स लाइफ में आ जाते हो। इसलिए कहा गया ऐसी इसको बचना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए ब्रह्मचारी को। ये संकल्प लिया कि आदर्श ब्रह्मचारियों की जीवन को अनुसरण करेगा, भीष्मदेव जैसे हैं, हनुमान जी है, बहुत अनेक ब्रह्मचारी है, इसको ब्रह्मचारी रहने के संकल्प, तो ब्रह्मचारियों के आदर्श को देखने से रह सकता ब्रह्मचारी, वो काम को जीत सकता है, ऐसे महान ब्रह्मचारियों के आदर्श को देखने से। लेकिन ये नहीं कि ब्रह्मचारी वरना ही केवल हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति करना है। यानी कि हम ब्रह्मचारी रहे और सारे माताओं की क्रिटिसाइज मने, फिर ये भी नहीं करना चाहिए, किसी क्रिटिसाइज करना है मना है। हम अपने धर्म पालन किए, ब्रह्मचारी रहे और जानते कि ये आश्रम भक्ति में है, हमें आगे बढ़ाने के लिए सहायता करेगा, ऐसा ही सोचकर इसमें इसकी सहायता लेना चाहिए। ब्रह्मचारी के पास में कोई समस्या नहीं है, है कोई चिंता है, जो मंदिर में रहता है इसको मंदिर में ब्रह्मचारी समय पर उसको सब कुछ मिलता है, मंगला आरती आता है, मंगला आरती आना, जब फोक करना, फिर प्रसाद के लिए उसको चिंता नहीं है, मार्केटिंग कहां जाना, धन कहां से आएगा, उसे टाइम पर घंटी बजे पर पहुंच गया, व्यवस्था कर दिए प्रभुपाद ने, ब्रह्मचारी गया, खाना पीना बेस अपना वस्त्र विश्व मिल जाता है, इसको से जो आवश्यकता मिल गया, क्या चिंता नहीं उसका, केवल दिन रात क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए, ब्रह्मचारी को संकल्प लेना चाहिए। ये संकल्प ले लेगा तो वो काम को जीत सकता है, लस्टी डिजायर को जीत सकता है। उस नारद मुनि कहते कि काम को कैसे जुगा, असंकल्पात जयत काम, यदि वो संकल्प ले लिया, योजनाएं बनाकर संकल्प के साथ इंद्रियों की काम पूर्ण इच्छा को त्याग सकता है, त्याग देना चाहिए। नारद जी ने भी ऐसा त्याग, वही भी ब्रह्मचारी है, कौन नारद मुनि है, नारद मुनि ब्रह्मचारी है, और सदा जहां भी प्रीचिंग करते, जहां भी जाते हैं, सभी को क्या बनाते हैं, ब्रह्मचारी बना देते हैं। दक्ष का पुत्र थे कितने, पहले 10,000 हयासो, फिर 1600, 1000, दो सेठ की लड़क बने, इतने इतने बच्चों को एक साथ में पैदा कर सकता था कौन। और नारद मुनि भी इतने को ऐसे ही एक्सपर्ट है कि इनको एक साथ में सभी को भक्त बना सकते थे, 2 मिनट प्रीचिंग करके बस भक्त बना दे सबको। दक्ष ने बड़ा गुस्सा हो गया, ये क्या करता है, सबको ब्रह्मचारी बना देता है। तो इसलिए नारद मुनि का उपदेश है, ब्रह्मचारी रहो, सादा जीवन और ऊंचा विचार, भगवान की भक्ति करो। इसे नारद मुनि यहां पर सलाह देते हैं कि संकल्प ले लो, संकल्प कर लो कि मैं स्त्री का संग नहीं करूंगा, विष्णु की तरफ भाग, किसी विशेष संकल्प लेकर फिर इसको फॉलो करने के लिए प्रयास करो। तो इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति के काम इच्छाएं त्याग देनी चाहिए, असंकल्पात जयत काम क्रोधं काम विवर्जनात्। जब ये काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध किस लिए उत्पन्न होता है, यदि आप किसी इच्छा मन में रखे हैं और इच्छा पूर्ण नहीं हो पाता है तो फिर क्या होता है, क्रोध आ जाता है। लेकिन यदि इच्छा भी पूर्ण हो जाता है तो अब भी क्रोध आएगा, इसलिए इच्छा पूर्ण होता है, व्यक्ति प्लान करता है किसके लिए, सुखी बनने के लिए, सोचता है कि मेरे ये चीज मिल जाएगी मैं सुखी बन जाऊंगा। लेकिन जब वो इच्छा पूर्ण होने पर भी जो सुख अनुभव नहीं होता तो फिर भी क्रोध आता है। ये संसार की जो स्थिति है, जिन्होंने संसार के निर्माण किए भगवान ने, उन्होंने निर्माण करके वहां पर नोटिस लगाया, क्या, दुखालयम अश्वासतम अनित्यम असुख लोकम, यह अनित्य है, यहां सुख नहीं मिलने वाला है, ये दुख की घर है, यहां कहां सुख ढूंढेगा, दुखालयम अश्वासतम, ये परमानेंट नहीं रहने वाला है, तो इसको हम भूल जाते हैं। तो इसलिए सोचते कि प्रभुपाद इसलिए कहते कि इस संसार में जो है विशेष रूप में लोग सुख ढूंढना चाहते हैं, स्त्री और धन प्राप्त होता है, किसी को सोचता है कि मेरे करोड़पति बन जाऊं और सुंदर स्त्री मिल जाए तो मैं बड़ा सुखी बन जाऊंगा। ये प्रभुपाद जी कहते थे कि ये दिल्ली के लड्डू की जैसे हैं, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताता है, जो नहीं खाया वो भी पछताता है, जिसके पास है वो भी बड़ा समस्या, उसी के लिए सारे समस्या, उसकी कितना समस्या है, चाहे कोई नगद केस छुपा के रखा था तो नोटबंदी कर दिया कौन, कितना समस्या धन के लिए है? दुनिया सबसे में धन की सुरक्षा कैसे करेगा, वो चिंतन करते कि टैक्स वाला ले लेगा कोई है, बड़ी मुश्किल। और चाणक्य पंडित कहते कि रूपपति भार्या शत्रु, रूपपति भार्या वो भी शत्रु है, वो कहते कि ऋणं कृत्वा पिता शत्रु, यदि पिता कर्जा छोड़कर चला गया और लड़का को सोचना पड़ेगा वो पिता शत्रु बना है। माता च व्यभिचारिणी, माता यदि पुरुष में मति रखता है वो भी शत्रु है। रूपवती भार्या शत्रु हो है? पुत्र यदि अपंडित मूर्ख पुत्र वो भी शत्रु बनता है। सगर के राजा के जो वो 60,000 पुत्र थे क्या किए है? मूर्ख थे तो इसलिए जाए कि कपिल मुनि को सताए तो अभिशाप से सारे नष्ट हुए। तो इसी प्रकार यीशु शत्रु है, इसलिए ये धन और स्त्री, इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये जो है ये दिल्ली के लड्डू की तरह, जिसके पास है वो भी पछताता है, वो भी कष्ट भोगता है, जिसके पास नहीं उसको भी कष्ट होता है, वो सोचता है कि मुझे मिल जाए मैं सुखी बनूंगा, जो प्लान करके इनको प्राप्त किया था वो भी दुख में रहता है। जो पुरुष और स्त्री परस्पर को प्रेम करते हैं तो लेटर लिखता है, फिर ये इसके पास लव लेटर लिखेगा, वो इसके पास लिखेगा, गरीब कहेगा तुम्हारे तो मार मुक्त है चंद्रमा के समान है, लेकिन भगवान ने एक बार राधारानी को है कि तुम्हारे मुक्त पूर्ण चंद्रमा जैसे, राधारानी को गुस्सा आ गई, इसके लिए बोले टेढ़ा बोलने वाला है, जानता है कि राधारानी के शरीर में चंद्रमा के मुख में भी पूर्ण चंद्रमा में कलंक दिखाई पड़ता है, ये अर्थात ये मेरे से भी कुछ दोष दिख रहा है, उन्होंने सोचा। लेकिन भौतिक दुनिया में जब कोई ऐसे लेटर लगता है कि आप जो आपके मुक्त बड़ा चंद्रमा की जैसे हैं, पूर्ण चंद्रमा जैसे हैं, तो बड़ा खुश हो जाता है। पहले उसको प्रारंभ से प्रेम करता था उसको चंद्रमुखी दिखाई पड़ता है, आस्ते आस्ते क्या दिखाई पड़ेगा सूर्यमुखी दिखाई पड़ेगा थोड़ा, और जब उसका डिमांड बढ़ते जाएगी मांगे गए वो डिमांड स्त्रियों की होती है, स्त्रियों को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, उनको गहना चाहिए, क्या चाहिए, अलंकार चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, ये सारे स्त्री शब्द का अर्थ है जो विस्तार करती है, विस्तार करता है। एकला था ब्रह्मचारी कुछ नहीं, बस खा पी के आराम से भक्ति करता था, लेकिन स्त्री आगे आ जाने से विस्तार होने लगा है। फिर प्रहलाद महाराज कहती फिर विस्तार होते रहेगा, फिर बच्चे आएंगे, फिर स्त्री से बच्चे आएंगे, फिर उनके लिए धन चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, गृह वित्त है, सुत गृह वित्त ये सब आवश्यकता है, बढ़ते जाएगा। इसलिए नारद मुनि सलाह देते कि ये कामना को त्यागो, ऐसी कामना को बढ़ने मत दो, संकल्प लेकर त्याग सकते इसको, और क्रोध को भी यदि काम को कंट्रोल किया तो आस्ते आस्ते क्रोध संयमित हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लगते कि ईर्षा न करने से हम क्रोध को जीत सकते हैं। यदि श्लोक में ऐसा नहीं कहा, श्लोक में कहते काम विवर्जन आता है, क्रोधन काम विवर्जन, काम को त्यागने से दृष्टि पर क्रोध भी संयमित हो जाते हैं, कि काम का छोटा भाई है कौन, क्रोध के भाई लोभ, ये सब भाई है, तीन है, एक भाई के बाद दूसरे भाई का नंबर आ जाता है। लेकिन प्रभुपाद लगते कि तात्पर्य, लेकिन पता नहीं इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है इसका, लेकिन यहां पर कह रहे कि ईर्षा को त्यागने से क्रोध संयमित हो जाता। तो आप साधारण तो ये ईर्षा भगवान की सेवा में नहीं लगता है, और सब लग जाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर काम को लगा सकते हैं, क्रोध को लगा सकते हैं, लोभ को लगा, लेकिन ईर्षा बड़ा ये ऐसा चीज है इसको भगवान की सेवा में नहीं लगा, एनवियसनेस है, ये भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है, और सब लग सकते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरिकथा, ये सब लग सकता है, लेकिन ईर्षा ऐसा ही चीज है इसको भगवान की सेवा में लगाना बड़ा कठिन है। ईर्षालु व्यक्ति कैसे से दूसरे को ईर्षा करेगा सब समय, दूसरे को सुख देखकर दुखी हो जाता है, पर सुखे दुखी पर दुखे सुखी, ये बद्ध जीव का लक्षण है, दूसरे को सुखी देखने से दुखी हो जाएगा, दूसरे को दुखी देखने से वो सुखी होगा। कभी कभी कहानी सुने ना, वो पड़ोसी दो थे, एक पड़ोसी का तपस्या किया, तपस्या करके शंकर जी से वरदान लिया, वरदान लेकर क्या वरदान दिया, शंकर जी कहीं तरह भाग्य में तो कोई सुख नहीं है, मैं देख लिया पूरा, लेकिन एक कंडीशन से तुझे सुख मिल सकता, तुमको जितनी सुख मिलेगा उसका दोगुना सुख किसको मिलेगा, तुम्हारे पड़ोसी को है, तुमको मैं जो भी चीज दूंगा उसका दोगुना उसको मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ उसका भी जो चीज घट जाएगा, नहीं तुम्हारे जो चीज घट जाएगा उसका दोगुना भी उसका घट जाएगा, तो बोला क्या करो, और तो उपाय नहीं, इसमें हो मार लिया, राकर अपने मकान में खड़ा हो, जमीन था मकान नहीं था बेचारा, मकान जमीन पर खड़ा होकर बोला कि मेरा जमीन में एक विशाल 5 मोहल्ले की क्या बिल्डिंग बन जाए, कहते हैं देखा कि तो उसका पड़ोसी का जमीन में 2 बिल्डिंग खड़ा हो गए, कहा कि मुझे स्वागत करने के लिए ये बिल्डिंग से एक सुंदर स्त्री आकर मुझे घर में स्वागत कर ले। देख रहे उसका दो दो बिल्डिंग दो दो औरत आकर इसको स्वागत कर रहे। अरे बोला कि क्या तपस्या क्या मैं और सारे ये भुगरा बैठे बैठे इसको सुख मिल रहा है, उसको दिखाता हूं मैं। आज से कहा कि आगे जाकर फिर देखा कि कहा कि घर के मेरे घर के सामने एक गाढ़ा बन जाए, पीछे साइड में गाढ़ा बन जाए। तो उसका जो घर के पीछे गाढ़ा बन गया तो इसका आगे पीछे दोनों साइड में क्या बन गया, गाढ़ा बन गया। बोला अभी तो इसको चखा तो बिना तपस्या में सुखी हो गया ना बच्चा। बोला कि ठीक है मेरे एक आंख तो उसका बेचारा का दोनों हाथ नष्ट हो गया है? घर से निकालते ही गाढ़ा में गिर गया है? लोग ऐसे ही होते हैं आपने इसलिए ईर्षाणु ये स्वाभाविक वृत्ति रहता है अंदर में, ईर्षा करना। यदि ईर्षा नहीं है तो उसको क्रोध नहीं आता। क्रोध आता जब देखा कि उसका दो दो स्त्रिया के स्वागत करते तो उसको क्रोध आ गया। बोला अरे तपस्या में क्या उसका वो भोग रहा है सुख, इसलिए उन्होंने क्रोधित हुआ। क्रोध होकर फिर प्लान बनाया कैसे उसको गाढ़े में डालना है। लेकिन यदि क्रोध को कोई ईर्षा करना छोड़ देगा तो प्रभुपाद जी कहते कि क्रोध को जीत सकता है। क्रोध ईर्षा के कारण आता है। यदि काम लस्टी डिजायर के बाप कारण हमको क्रोध आता है, सेटिस्फाई होने से भी नहीं होने से भी क्रोध आता है। लेकिन फिर प्रभुपाद जी कहते कि नहीं ईर्षा से ईर्षा के कारण व्यक्ति क्रोध करता है। इसलिए हम यदि लोगों को ईर्षा करना छोड़ देंगे तो फिर हम क्रोध को भी जीत सकते हैं। एक उदाहरण दी जाती है लाला बाबू भक्ति से रसायन सिंधु में प्रभुपाद उनके नाम भी लेते क्या। एक सेठ था कलकत्ता में, उसका नाम था क्या लाला बाबू। तो उनका जो कॉम्पिटिटर और एक मर्चेंट था और एक व्यापारी था। आप वृंदावन जाओगे दो टेम्पल देखोगे, बड़ा बड़ा टेम्पल। एक रंगनाथ जी की मंदिर है, उसके जो कॉम्पिटिटर था वो भी ऐसा ही मैंने प्रतिद्वंदी थे। कई बार उनका झगड़ा होता, कोर्ट केस भी चलता था। लेकिन पहले लाला बाबू ने भक्त बन गए। कौन भक्त बन गया? लाला बाबू भक्त बन गए। आके फिर पूरा भीख मांग के माधुकरी करी खाते थे। जो धन था घर में उसमें एक विशाल मंदिर बनाया। कौन सा? लाला बाबू मंदिर, बड़ा फेमस है। लाला बाबू ने मंदिर बनाया। लेकिन जो माधुकरी करने के लिए फिर गए उसी घर के, किसी घर में जिसकी प्रतिद्वंदी था, उस व्यवसाय के घर में गए मकान में माधुकरी मांगने। इनको देखकर वो तो आश्चर्यचकित हो गया, ये व्यक्ति कैसा, ये साधु कैसे बन गया। उसको रोना आ गया, वो भी रोने लगा। तुरंत ही दोनों को वांछा कल्प करके आलिंगन करने लगे। वो देखा लाला बाबू भी सारा धन खर्चा माने लगाकर ये इतना विशाल मंदिर बना दिया। उसने भी अपना सारा धन को लगाकर फिर रंगनाथ जी का मंदिर बनाया। वो लक्ष्मीनारायण के भक्त था। तो इसी प्रकार यदि हम ईर्ष्या करना छोड़ देते हैं तो इसको जीत लेते। किसको? क्रोध को। उसको नारद मुनि कहते कि इससे बा प्रभुपाद जी कहते कि इससे आगे कहते कि ईर्ष्या को त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। धन संग्रह करने के दोष पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग किया जा सकता है। तो धन के द्वारा कितनी समस्या होता है इसको जो ठीक से विचार विमर्श करेगा, मेरे दुख का कारण क्या है, ये धन की क्या करूं मैं, इतनी धन रख के घर में, धन तो साथ में लेके नहीं जाऊंगा। यदि इसका पर थोड़ा विचार विमर्श करेगा, धन तो मेरे साथ नहीं जाने वाला है, भागवत यदि पढ़ेगा बैठकर बस सुनेगा तो पता लगेगा कि मैं अकेला आया और अकेले जाएगा। इतनी सारा धन संपत्ति जो मैं रखा हूं ये क्या काम में आने वाला है, जाने के टाइम तो कोई नहीं जाएगा मेरे साथ, धन तो नहीं जाएगा। और धन की जब इस जीवित समय में भी धन के लिए मुझे कितनी कष्ट उठाना पड़ता है, जो कहां छुपा के रखूंगा, गवर्नमेंट टैक्स में ले लेगा, कभी फिर चोर डकैत लोग ने लूट लेंगे। धन के लिए कभी जान भी जा सकता है, कभी धन के लिए जो बनी का तस्कर पाया वो प्रहलाद महाराज कहते ना, ये लोग जान को बाजी देकर धन कमाते। जो सैनिक है जाता युद्ध करने, व्यापारी, चोर, ये सब अपने जीवन जान को बाजी देकर धन कमाते हैं। समझते नहीं क्योंकि अज्ञानता के कारण। इनको यदि किसी ना किसी कारण से सत्संग में बैठकर हरि कथा को श्रवण करें फिर पता लग जाएगा कि धन का संचय करने की आवश्यकता नहीं है। इतना धन क्या करेंगे, जितनी हमारे लिए आवश्यक है फिर इतनी धन आप पास में होने से ही, और जो समय हमको अधिक मिलता है तो उसमें से क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गोस्वामी लोग ने जब चैतन्य महाप्रभु को मिले रूप और सनातन, सब त्याग दिए। त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति शनिंग सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपी न कंथस्य, तो सब त्याग दिए। साधु संघ से के प्रभाव से आने से व्यक्ति धन की लोभ छोड़ सकता है, है? सब त्याग दिए। समझ गए धन क्या होने वाला है? भज उरे मन्न श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंदम, ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परतीति रे, कमल दल जल जीवन टलमल भजऊ हरिपद नीति रे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति धन संग्रह करने के जो इसका जो क्या डिसएडवांटेज है, इससे जो विपद आता है उसको ठीक से चिंतन करेगा तो फिर उस साधु संघ में इसको समझेगा, त्याग सकता है। नारद मुनि ने एक समझाया कि व्यक्ति को, सब त्याग कर चला गया है वानप्रस्थ लेकर, कौन चौथा स्कंद में चर्चा की जाती है, महाराज प्राचीन अभिशप्त है। नारद जी ने उसको समझाया, क्या कर रहे इतने सारे पूरा विश्व के सम्राट है, सब एकाठी किया, धन धन और स्त्री में तुम्हारे जो आसक्त है यही तुम्हारे विनाश के कारण होगा, अगला जन्म में तुम स्त्री का शरीर मिलेगा तुमको है, ज्यादा रानी में आसक्ति है तो अगला शरीर रानी का चिंतन कर शरीर त्याग, तो अगला जन्म फिर तुमको क्या बनेगा, स्त्री बनेगा है। स्त्री को पुरुष आसक्त होने से पुरुष का शरीर, पुरुष स्त्री का शरीर होने से स्त्री का शरीर मिलेगा, उसको समझाए है पुरंजन की कहानी कहकर। तो समझ गए धन स्त्री साज्य ये कुछ कुछ तो साथ में जाने वाला नहीं है, लेके नहीं आया ना लेके जाएगा। तो इस प्रकार विचार विमर्श करके यदि वो इसको समझ जाएगा तो फिर वो धन की प्रति आसक्ति त्याग सकता है, है? तो इसी प्रकार उन्होंने धन संग्रह के दोष से पर विचार विमर्श करके ये लोभ को परित्याग कर सकता है, लोभी जो बन रहा है तो लोभ को त्याग सकता है, है? फिर वो सारा जीवन उच्चा विचार साधारण गोस्वामी की बनकर भी गोस्वामी साधारण वस्त्र पहनकर फिर भगवान के भजन में लग सकता है, जैसे गोस्वामी लोग ने लगे तो महान विषय मैंने ये सभी बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति के संतान थे, जैसे रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी एक ही लड़के थे अपने पिताजी का, लेकिन इन्होंने जो महाप्रभु के संग प्राप्त किया और जीवन के लक्ष्य को समझे सब त्याग करा गए। इसका इसी प्रकार विचार विमर्श करके धन के प्रति आसक्ति व्यक्ति त्याग सकता है, है? फिर वो जितनी आवश्यकता इतना रहना, इतना रखना सामने साथ में रखकर जो भविष्य और जो समय मिला उसमें क्या करना चाहिए, उसको भजन कर सकता है भगवान हरि, है? जो हरि भजन में जो सुख मिलता है वो सुख अमीर में नहीं मिलता है, है? अमीर बनने से करोड़पति बनने से वो सुख नहीं मिलने वाला है, इसलिए सत्संग में आने से और इसको विचार विमर्श करके व्यक्ति धन के प्रति लोभ भी त्याग सकता है, धन संग्रह करने के दोष विचार विमर्श करके ये लोभ को भी त्याग सकता है, जो लोभी हमारा लोभ बनने का जो प्रवृत्ति है सेटिस्फाई नहीं होना, बदल में चलने वाला साइकिल, काली वाला साइकिल से फिर मटर, ऐसे जो आस्था से कहा फिर ऐसे चाहिए अच्छा से अच्छा, मगर ये जो प्रवृत्ति है जीवन का लक्ष्य को यदि कोई समझ लेता है विचार विमर्श करके साधु संघ में तो फिर वो लोभ को भी जीत सकता है। अंत में नारद मुनि ने कहते कि भयं तत्व विमर्शनाथ, भय को भी जीत सकता व्यक्ति, जब तक वो भय को नहीं जीतेगा वो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता, इसलिए प्रभुपाद जी का नाम क्या, अभय चरणारविंद। जो अभय कैसे रहेगा, भय से मुक्त कैसे रहेगा, यदि वो अभय चरणारविंद को आश्रय करेगा, भजहु रे मन सीनंद नंदन अभय चरणारविंद, जब भगवान श्री कृष्ण की जो अभय चरणार चरण जिनकी चरण कमल को आश्रय करने से व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, इसी प्रकार ये सत्य है, सत्य के अनुसंधान करके भय से मुक्त होना। सत्य क्या है, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, इसी को समझेगा व्यक्ति, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, इसको जब वो समझता है तो फिर भय में भय से मुक्त हो सकता है। इसको जो केवल थियोरेटिकल नहीं, जो इसको प्रैक्टिकल समझेगा, प्रहलाद के उदाहरण लेगा, प्रहलाद महाराज ने इसको आत्मसाक्षात किए हुए जो भक्त हैं वो भयभीत नहीं होते, चाहे हिरण्यकशिपु कुछ भी बोले, हिरण्यकशिपु को सारा दुनिया डरता था, देवता लोग ने भयभीत होकर आकाश में कंपते थे, स्वर्गों में जब कली क्रोधित होकर देखता था, लेकिन उनके सामने एक 5 साल की बच्चा बेटा खड़ा था, वो डरता नहीं था उसको, किसको, हिरण्यकशिपु को, और उसको उल्टी कहता था कि हैं अभी तो अब पिताजी और वानप्रस्थ लेने के समय हो गया है, वनं गच्छत्वं हरिमाश्रय, हैं जाओ हरि का आश्रय करो, जाओ जंगल में चले जाओ। क्रोधित होता था इतने हिरण विषय, गर्जना करता, लेकिन उसको कोई भय नहीं था, किसको, प्रहलाद को कोई भय नहीं था, क्योंकि सत्य को जानता था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसको लेके ही सांप के जहर पिलाना, बा पागल हाथी के सामने डालना, हिंस जंतु के बीच में फेंक देना, विष पिलाना, पहाड़ के ऊपर से फेंकना, कुछ भी कर ले, प्रहलाद कोई भयभीत नहीं हुए, सत्य को जानते थे। ये सर्वत्र भगवान है, भगवान कहाँ है, सर्वत्र है। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तेसाहं न प्रणश्यामि सच मेन प्रणश्यति, जानते, विश्वास था भगवान की गीता के वचन में, सत्य यही है, भगवान सर्वत्र है और भगवान सदा हमारा अपने भक्त को रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजना ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, इसको पूर्ण विश्वास है सत्य को, जो गीता में भागवत में जो सत्य कहा गया, उसको विश्वास जो कर ले, पूरा पूर्ण विश्वास हो जाता है जिसको, वो फिर भय से मुक्त हो सकता है, वो भयभीत नहीं होता, किसी भी स्थिति में सत्य को बल सकता है, भय से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार संक्षेप में नारद मुनि हमको सलाह देते कि कैसे इन शत्रुओं से बचना, इन अनर्थ से बचना, काम को कैसे जीतना, क्रोध को कैसे जीतना, लोभ को कैसे जीतना और भय से कैसे मुक्त होना, चारों चीज नारद मुनि इस श्लोक में समझाए। ओके, कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई संकल्प लेते हैं और उसके बाद अपने आप को अलग अलग सेवाओं में एंगेज करते हैं, लेकिन मन में जो है संकल्प के ऊपर कंटेम्पलेशन चलता रहता है, और जितना व्यक्ति का कंटेम्पलेशन होगा संकल्प पे, उसका पतन और बुरा होता है, तो उससे हम किस तरह से बच सकते हैं?
आप संकल्प लिया मैं स्त्री के दर्शन नहीं करूंगा, और ज्यादा दर्शन करने की सोचोगे ना क्या? नहीं, ऐसा नहीं,
ये संकल्प किया कि ये नहीं करूंगा, और उसके बाद मैं हम अपनी सेवाओं में एंगेज हो गए, लेकिन माइंड में चल रहा है संकल्प के ऊपर मैं ये काम नहीं करूंगा नहीं करूंगा, तो फिर एक समय के बाद वो हमारा संकल्प टूट जाता है?
नहीं टूटेगा, इसलिए महाजन जन गतस्य पंथा, महाजनों को आदर्श को देखो, वो कैसे संकल्प लिए फिर उसके साथ जीवन में उतारे, इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य तीनों की आवश्यकता है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सत्वभूते षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, इसके पर ध्यान देना, भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाता है, जो संकल्प लिया इसको पूरा करूंगा। प्रभुपाद कहे कोई भी व्यक्ति यदि भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से सफलता प्राप्त करना चाहता है, तीनों चीज के ऊपर ध्यान दें, उत्साह निश्चय धैर्य, जानना चाहिए कि इम्पोसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी, रूपा जी ने कहा था, ये बुद्धू का डिक्शनरी में शब्द रहता क्या, असंभव, असंभव कुछ नहीं संसार में, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट नेपोलियन बोनापार्ट का, फ्रांस का एम्परर जो था, वो साधारण पदातिक वाहिनी में एक सैनिक था, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक दिन ये फ्रांस का सम्राट बनूंगा, और उत्साह निश्चित आस्था से प्रयास के बन गया, भौतिक दृष्टि से भी बन सकता है, आध्यात्मिक दृष्टि से संकल्प लिया मैं इसी जीवन काल में संपूर्ण रूप में मैं शुद्ध भक्त बनूंगा, मैं कृष्ण को संपूर्ण सबको समर्पण करूंगा, क्या दिक्कत है, प्रयास करना पड़ेगा, उत्साह निश्चय धैर्य, यानी कि रातारात बन जाए लेकिन बाधा विघ्नों को अतिक्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए प्रभुपाद ने भी कहे इम्पोसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी, बुद्ध का डिक्शनरी में रहता है। प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली भी करके दिखाया, इसको 40 रुपया लेकर अमेरिका गए, लेकिन उनके पिछले बार जो आए थे मीरा रोड में, उनके लड़का को मिले थे हम, इनके लड़का वृंदावन प्रभु है, वृंदावन प्रभु आए थे, तो उन्होंने कहते थे मैं जब मेरे पिताजी को मिलने के लिए गया था कलकत्ता में, जहाज में और कोई नहीं था, मैं अकेला था, पिताजी ने मुझे तुम्हारे लड़ा में तुम्हें लिखा हुआ कि 40 रुपया है, प्रभुपाद ले गए थे, बहुत 40 रुपया प्रभुपाद ने मेरे पिताजी ने मुझे ही दे दिए थे, 40 रुपया उन्होंने अपने जॉब से निकाले पिताजी, और कहे कि वृंदावन ये रखो, मेरे पास तो और कुछ नहीं, 40 रुपये है ये रखो, मुझे तो कृष्ण ही मेरी देखभाल करेंगे, हैं, समझ रहे। तो इसलिए भगवान रक्षा करेंगे, अवश्य राखी भी कृष्ण, विश्वास पालन, विश्वास रखना है। सनातन गोस्वामी आ रहे थे कहाँ, वृंदावन आ रहे थे, वो उनका 8 स्वर्ण मुद्रा रखा था, कौन उनकी वो ईशान उनकी नौकर, 8 स्वर्ण मुद्रा रखा था, तो वो फिर भी जो होटल वाला ने उसको डकैत तो था, होटल खुल के बैठा था। सनातन गोस्वामी राजमंत्री थे, सब जानते थे, हैं, तुमने देखी कि इतने आदर क्यों कर रहा, बिना कोई पहचान नहीं कुछ नहीं, इतने खाना पीना व्यवस्था सारे रहने की व्यवस्था कर रहा है, तो उसको पूछे कुछ पैसा है कि तुम्हारे पास, बोले हाँ मेरे पास में 8 स्वर्ण मुद्रा है, बोले लाओ मेरे, नहीं वो 7 बोला 7 लाओ, तो ला के दे दिया, वो लेके उसको दे दिए, किसको, लोभ को, उसको दे दिए, लेकिन वो बोला नहीं तुम्हारे पास में 7 नहीं 8 है, मेरे ज्योतिष ने गणना करी कहा 8 है। फिर आके पूछे इसको, ईशान तुम्हारे पास और है, बोला है मेरे पास में और एक बच्चा एक, बोले तुमको अभी तक धन में लोभ है, तुम वृंदावन जाने की योग्य नहीं है, गेट आउट, यहां से जाओ वापस जाओ घर में, हैं, भेज दिए इसको वापस। तो संकल्प लेना चाहिए, संकल्प को फॉलो करना, महान आदर्श के आचार्यों की आदर्श को सामने रखना, ये कैसे इसको पालन किया और मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, है, कोई चीज असंभव नहीं है, ठीक है। और कोई प्रश्न है,
हरे कृष्ण महाराज। महाराज हमारे अंदर अगर ईर्ष्या है भक्तों के प्रति या कुछ चीज के प्रति, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स,
मन में जो इच्छाएं है,
ईर्ष्या है
मन में ईर्ष्या है, उसको कैसे निकाल सकेंगे, उसे कहा गया कैसे ईर्ष्या को निकालना,
प्रैक्टिकल
ईर्ष्या कैसे त्यागना, नहीं सॉरी, ईर्ष्या को त्यागने से हम किसको जीत सकते, बोले
क्रोध को जीत सकते,
लेकिन ईर्ष्या को कैसे जीतना, यहाँ पर नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे नारद ने अगले श्लोक में बताएंगे, ईर्ष्या को हम जीत सकते, कोई असंभव नहीं है। ईर्ष्या आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम का कृष्णेन्द्रिय प्रतिभा तारे कही प्रेम, सो गोपियां लोग ने प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए देखता था, एक गोपी देखा है कि कृष्ण की गला में देखा कि चंद्रावली का सखी पद्माने की माला बहुत अच्छा माला डाला है, ललिता देख लिया इसको, तुरंत जाएगा और इससे भी बेस्ट बहुत अच्छे सुंदर और बेस्ट माला बना के लाके कृष्ण को पहनाएगी और दूसरे जो माला था उसको छीन के फेंक देगी। ये ईर्ष्या नहीं है, ये मैंने बहुत ट्रांसडेंटल एक्सप्रेस मैंने बोल के कॉम्पिटिशन है सेवा का, लेकिन उसी परवर्टेड फॉर्म में उल्टे फॉर्म में यहां पर कैसे रूप में आता है, ईर्ष्या बन जाता है इस दुनिया में, जैसे प्रेम ही काम बन जाता है, इसी पर ये भविष्य बन जाता है, लेकिन यही ईर्ष्या को हम भी कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे,
और अच्छे से ज्यादा सेवा करें या
ज्यादा सेवा, इसका कोई उत्तर अभी आचार्य लोग ने नहीं देखो कि ये लगाना बड़ा मुश्किल है, इसको ईर्ष्या को भगवान की सेवा में लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सेवा में कभी कभी ट्राई करें, ईर्ष्याणु बनकर 2 बुक डिस्ट्रीब्यूटर गए, एक ज्यादा बांट के आया, कितना, 100 बांट के आया, तो दूसरा दिन उसका नाम डिक्लेयर हुआ, मैराथन जीत गया, तो फिर प्लान बनाएगा अगला मैराथन में मैं कैसे जीतूंगा, लेकिन ईर्ष्याणु नहीं बनना चाहिए, ठीक है, अच्छा है, हमारा भक्ति को आगे बढ़ने में रुक सकता है, ईर्ष्या को जितना इतना आसान नहीं, आगे नारद मुनि कहेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे बात में। और कोई प्रश्न है, हाँ
हरे कृष्णा, जैसा कि आपने महाराज जी जो कि जो ब्रह्मचारी होते हैं यदि स्त्री के प्रति आसक्त होते हैं तो उसको अगले जन्म स्त्री बनना पड़ता है, तो हम देखते बढ़ना
ब्रह्मचारी नहीं, कोई भी गृहस्थ जीवन में रहेगी भी, पति यदि स्त्री के बारे में सदा सोचते रहोगे अगला जन्म स्त्री का मिलेगा,
तो फिर वर्णाश्रम धर्म में तो फिर गृहस्थ लोग तो हमेशा रहते हैं, तो उन लोग है? तो वर्णाश्रम धर्म जो भगवान भगवत गीता में बताया कि चतुर्वर्ण में अशुष्टम, तो वर्णाश्रम धर्म जो है उसमें तो गृहस्थ भी आते हैं, तो वो लोग तो हमेशा रहते हैं, तो उन लोग को भी स्त्री बनना पड़ता होगा,
जो स्त्री की आसक्ति रहेगा घर में रहकर भी भक्ति विनोद ठाकुर की तरफ यदि तुम सदा कृष्ण में मति रख सकते हो, स्त्री नहीं बनोगे,
संसारे जे मत प्रीति आछे आमारो सेई मत प्रीति हो चरणे तुमार। मक्सुन ढाक कहते जैसे मेरे मत्ती अभी लगा हुआ है संसार में, घर बार स्त्री परिवार में, हे प्रभु मुझे कृपा कीजिए ऐसा ही ममता आपके चरण में हो जाए, मेरे मत्ती आपके चरण में ऐसे ही लग जाए। ठीक है, अनासक्तस्य विषयान यथार्ह उपोंजित है, अनासक्त होकर विषय के प्रति आसक्त न रहकर वैसे ही रहो, नहीं ऐसे आसक्त नहीं होना उसमें, सत्य को जानना, ये सब अनित्य है सब है, ये जो जितनी घर बार परिवार ये सब अनित्य है, लेकिन फिर भी मैं ड्रामा करने के लिए जो उतारा स्टेज में, ड्रामा को ही निभाना पड़ेगा, एक्टिंग ठीक से करना पड़ेगा, लेकिन अंतर है निष्ठा, बाह्य लोको व्यवहार, बाहर में लोको व्यवहार, अंदर में निष्ठा किसमें, कृष्ण के चरण में। ठीक है,
हरे कृष्ण महाराज जी। गुणों के प्रभाव, गुण हमारे इच्छा और कामनाओं को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे हम कैसे अपने गुणों,
पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणा, कारण गुण संग अस्य सद असत जोनि जन्मसु, तो गुणों के संग से मुक्त होना पड़ेगा ना, है? कैसे मुक्त हो गए, योमन अव्यभिचारेण भक्ति जोगे न सेवते स्वगुणान समति तैतान, वो गुणों को प्रभाव से मुक्त हो सकते, तो इसलिए भक्ति सिखाया जा रहा है इस कल में, शुद्ध भक्ति करोगे आस्ते अपने आप गुण से प्रभाव से मुक्त हो सकते हो, सुक्त हो जाओगे, नहीं तो गुण के प्रभाव से मुक्त होना आसान नहीं है, है? कर्म जोग ज्ञान ये आपको गुण से प्रभाव से नहीं बचा सकते, केवल कौन बचाएगा, शुद्ध भक्ति, योमंग अव्यभिचारेण भक्ति जोगे न सेवते स्वगुणान समति तैतान, गुणों के प्रभाव से वो मुक्त हो सकता है, इसलिए भक्ति योग सिखाते, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन भक्ति योग कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन, वृंदावन दास ठाकुर कहते चैतन्य भागवत में भक्ति योग का अर्थ क्या है, ये हमारा असली धन है और कोई धन नहीं संसार में, कृष्ण नाम धन है, कृष्ण नाम धन यही धन है, लेकिन कैसे ये कैसे है भक्ति का अर्थ क्या, कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन, भगवान की लड़ाओं को जो सुनते हैं नाम रूप गुण लड़ाओं को सुनते, तो आंख से अश्रु आना चाहिए, ध्यान से सुनना है, जो श्रवण नहीं कर पाएगा ठीक से आगे अंग भी बढ़ नहीं पाएगा, सबसे पहला अंग श्रवण, जो ठीक से सुना नहीं फिर आगे कीर्तन में नहीं करेगा और स्मरण में नहीं कर पाएगा, इसलिए सबसे पहला अंग है श्रवण, साधु को देखना है तो कान से देखो सुनो, जो नहीं सुना यहीं पर यदि कमी रह गया, सुनते ही यदि आप आंख से अश्रु नहीं बहा तो आगे कहां से बढ़ोगे, इसलिए श्रवण श्रवण क्रंदन रोना आंख से अश्रु, जो सीरियस व्यक्ति हो जाता है उसके आंख से अपने आप अश्रु बहता है, नयनाद गलद अश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितंग बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, जब तक स्तर में आप पहुंचे नहीं तो कहां से आएंगे, इसलिए गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर में कहते थे कि आई हैव टू ओपन ए क्राइंग स्कूल, ये बौद्ध जीवन को सिखाना पड़ेगा कृष्ण के लिए कैसे रोना, अभी वो संसार के लिए रो रहे हैं, इनको पता नहीं कृष्ण के लिए रोना, ऐसे ही रोना यदि कृष्ण के लिए आएगा तो कृष्ण के संसार पर हमने गोलोक में पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाँ
हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू फॉर द क्लास। महाराज आप बता रहे थे कि कैसे वो संकल्प योजना बनाकर हमें काम पर जीत प्राप्त करना चाहिए, तो आप बता रहे थे कि संकल्प के बारे में, तो ये भी प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा था, तो मेरा प्रश्न ये है कि संकल्प लेते समय जैसे हम कैसे योजना बनाए, तो एक होता है कि संकल्प लेने से हमें थोड़ा घमंड भी आ जाता है, जैसे हम वो कथा भी पढ़ते हैं राजा कौशिक की, कि कैसे उसने संकल्प तो ले लिया था कि बट फिर फिर मेनका से तो उसने जब टूट गया था तो उसने संकल्प ले लिया था, तो फिर बाद में जब रंभा आ गई तो फिर से उसका संकल्प उसने ले लिया था, जैसे आपने बताया, तो हम भी हमारे जीवन में ऐसे कैसे योजना बनाए कि वो संकल्प हमें, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि एनवियसनेस कैन बी ओवरकम्ड यू नो बाय टेकिंग सॉरी एंगर कैन बी हाँ तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है तो कैसे हम ले सकते हैं इसको.
तो आपके पास दृढ़ता भी होना चाहिए ना, उत्साह निश्चय धैर्य पेशेंस भी होना चाहिए. ऐसा नहीं होगा आपने खाली संकल्प लिया और उसके लिए प्रयास नहीं किया तो कैसे होगा. प्रयास भी करना पड़ेगा ना उसके लिए. आप कितनी दृढ़ता के साथ संकल्प लिए वो निर्भर करता है. इसलिए सबसे पहले आदर्श रखना चाहिए व्यक्ति को और उनकी कृपा की याचना करना चाहिए. किसकी? किसी आदर्श व्यक्ति से उनकी कृपा. आप सब कुछ प्रयास स्वयं का प्रयास से नहीं कर पाओगे. किसी भी कार्य में सफलता के लिए आपकी प्रयास और दूसरों की क्या आशीर्वाद चाहिए. कि चाहे भगवान की आशीर्वाद मिले या किसी महाभागवत की आशीर्वाद मिले है? नहीं तो नहीं होगा. केवल आप यदि संकल्प वही अहंकारी है, अहंकारे मत्त होया निताय पद पासरिया. अहंकारी व्यक्ति फिर भूल जाएगा निताय चरण, गुरु की गुरु का चरण और वैष्णव के चरण को भूल जाएगा. ये दोनों की सहायता चाहिए. किसकी? साधु गुरु वैष्णव की सेवा सहायता चाहिए. आपके मन ऐसे कृष्ण में नहीं लग रहा, लेकिन यदि किसी संत ने आपका आशीर्वाद दिया जिसकी मन सदा कृष्ण में लगा हुआ, तुम्हारे मति कृष्ण में लग जाए, लग गए. भगवान अपने भक्तों के वचन को टालते नहीं है. ईश्वरपुरी ने इतनी सेवा किया माधवेंद्रपुरी के अंतिम समय में. अंतिम समय माधवेंद्रपुरी ने आलिंगन किए. किसको? ईश्वरपुरी को. कृष्ण ने तुम्हा के हौ को प्रेम धन आशीर्वाद दे दिए. भगवान श्री कृष्ण के चरण में तुम्हें प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो गए. इसलिए प्रयास स्वयं का प्रयास सब कुछ नहीं है. इसलिए छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं. इसलिए स्वयं का संकल्प साथ साथ साधुओं की आशीर्वाद. विजयी भव, सारे आशीर्वाद दिए. किसको? युधिष्ठिर महाराज को. कोई दुर्योधन को दिया नहीं, वो इतना प्रयास करते रहा. सारे बड़े बड़े योद्धा उसके पास थे, लेकिन कि सभी गुरुजनों के आशीर्वाद किसको मिला? युधिष्ठिर महाराज को. उसकी मां ने भी युधिष्ठिर महाराज को सब कहे, भीष्मदेव भी कहे विजयी भव, सब ये उसी के पक्ष में रहे, सब दिए आशीर्वाद. इसलिए संतों की जो आशीर्वाद है ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है. कोई कहा इसलिए स्वयं प्रयास करना तथा दूसरों की क्या आशीर्वाद. वैष्णव सेवा है, वैष्णव सेवा करके भगवान के इस दिन किसी ना किसी का आशीर्वाद जरूरत है. सब कुछ प्रयास से नहीं होता. हाँ
रिक्षा महाराज जी, प्रश्न है कि आज समाज में साधु को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न है. लोगों के मन में साधु को देखते ही उनको संशय आ जाता है. तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, जब तक कोई व्यक्ति मुक्त ना हो तो किसी को मुक्त नहीं करा सकते. तो ऐसे हम जैसे श्रवण तो पहला अंग है भक्ति का, तो हम ऐसे सुनना चाहिए किसी को.
सर्पोचिष्ट यथा अपय अवैष्टम्ब मुखद गिर्न पूत हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यं सर्प उचिष्ट जथा पयम. इसलिए वैष्णव के मुख से सुनना.
वो जो मुक्त पुरुष है उनका लक्षण क्या है, उनको कैसे पहचाना जाए, जो इनसे सुनने से हम समर्पण करें, उनसे सुने. और लोगों को एक बड़ा प्रश्न है.
शास्त्र में सारा लक्षण कहा गया. वैष्णव का लक्षण क्या? तितिक्षव तारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण वाचो वेगम मानस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषयत धीर सर्वाम अपिमांश पृथ्वी च शिष्यात. ये लक्षण है शास्त्र कहा गया. सबसे में तीनों चीज देखना, साधु शास्त्र गुरु. साधु को परीक्षा करना शास्त्र चक्षु से, शास्त्र चक्षु देखना ये व्यक्ति क्या है. स्त्री लोलोप है, तो व्यक्ति कैसे गुरु बनेगा, संत कैसे हो सकता है. इसके कई लक्षण है. इस लक्षण शास्त्र में कहा गया. शास्त्र से शास्त्र चक्षु से देख सकते वाणी को संजमता है कि नहीं है. वाचो वेगम मानस मन की संजमता क्रोध की संजमता ऐसा देखना पड़ता है साधु का है. वाचो वेगम असली जो है साधु को पहचानने की सहायता हमको कौन करेगा? कृष्ण. कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण. असली बात है कि आप कृष्ण के सामने रोना है, क्राइंग स्कूल. इसलिए कृष्ण के सामने रोगे कृष्ण पहुंचे. आप नहीं जानते कौन साधु, कृष्ण जानते हैं. रसिकानंद प्रभु ने कृष्ण के सामने रोए, मुझे कहा गुरु एक आपका भक्त मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे तो आपके पास आने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, मैं जानता हूं। तो कृष्ण को रहा नहीं गया, श्यामानंद प्रभु बोले जाओ उसके पास। हैं श्यामानंद प्रभु बेचारे वृंदावन में भजन करने थे तो सेवा कुंज में बैठकर जब आए थे, दो चार दिन हुआ तब वो नहीं थोड़ा, लेकिन कृष्ण ने कहे नहीं जाओ, कहा रसिकानंद के पास जाओ, उसको जाके दिखाओ, उसको शिष्य बनाओ, भेजिए उसको। रसिकानंद क्या करते थे वो श्यामानंद कौन जानते नहीं थे, कृष्ण के पास रोते थे। आप जो कृष्ण के ऊपर भरोसा रखोगे कृष्ण सब आपको मदद करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, कृष्ण की शरण में आओ, आपके जो कुछ भी जोगो क्षेमं वहामि हम अनन्य चिंतयन्त मां यजना परिपासते दशां नित्य भुक्तानां जोगो क्षेमं वहामि हम। कमी कभी सभी समय हमारे पास रहता है, बद्ध जीव के पास में चार कमियां होते हैं, त्रुटि करना, माया के द्वारा मोहित होना, गर क्या अपूर्ण इंद्रियां और धोखा देने की प्रवृत्ति, ये बद्ध जीव के पास होता है, ये किसी मुक्तात्मा या कृष्ण के पास में ये गुण नहीं होते हैं। इसलिए सब समय हम कृष्ण की यदि आश्रय लेंगे कृष्ण मदद करेंगे, कृष्ण सदा हमको मदद करने के लिए तैयार है। कमी हमारे पास है, हम अभी तक कृष्ण को आत्मसमर्पण किए नहीं, रोने ही रोना शुरू कीजिए कृष्ण के सामने, कृष्ण मदद करेंगे। साधु कौन है वो जानते हैं, हम नहीं जानते लेकिन कृष्ण जानते हैं, प्रकृत उनके शुद्ध भक्त कौन है। तो वहां पहुंचाते कृष्ण की सबसे बड़ा कृपा एक बद्ध जीव के प्रति इसको लेकर उनके शुद्ध भक्त के चरण में डालना, ये सबसे बड़ा कृपा है किसकी, कृष्ण की। कृष्ण तभी गुरु, इसलिए कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं, ठीक है। नहीं तो जो जिसके मन में भौतिक इच्छा है कृष्ण जानते हैं ना सब, आप ठगा नहीं सकते कृष्ण को। आपके मन में कैसे गुरु आपको चाहिए, आपके मन में कैसे कैसे सब इच्छा है, तो उसी आधार पर चीटिंग गुरु चाहता तो वो चीटिंग गुरु भी पास पहुंचा देते हैं, सोचते हैं मेरे पास में ऐसा ही ऐसे गुरु मिल जाए, मुझे ऐसे ऐसे इच्छा से मेरी पूर्ण हो जाए, तो ऐसे इच्छा भगवान भी ऐसे ही करते। यदि सभी प्रकार की कामना से शून्य होकर केवल शुद्ध भक्त की चरण की शरणागत ना, तो भगवान उसमें भी सहायता करते। जो जतामान प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। हैं इसमें कृष्ण की दोष नहीं है, ठीक है। तो शाम को मैंने काल ने जो वैष्णव आचार्य जी तिरुभाव आविर्भाव आज रामचंद्र कविराज की तिरुभाव है और गोपाल भट्ट गोस्वामी की आविर्भाव, तो इसको डिटेल सुनना चाहते थे आप फिर शाम की कक्षा में पधारने का, अभी समय नहीं है उनकी चर्चा करना। तिरुभाव आशीर्वाद और आविर्भाव दोनों वैष्णव की महत्वपूर्ण है, भगवान की केवल हम क्या मनाते हैं उनके आविर्भाव, वैष्णव की तिरुभाव आविर्भाव दोनों ही महत्वपूर्ण है। भक्ति मोहन ठाकुर इसलिए कहते कि ही रीजन सील हु थिंग्स दैट वैष्णवस डाय, दाव आर्ट इज लिविंग स्टिल इन साउंड, वैष्णवस डाय टू लिव एंड लिविंग स्प्रेड होली नेम्स अराउंड। इसलिए महान वैष्णव आचार्य की जो तिरुभाव आविर्भाव के बारे में चर्चा शाम को हो रहा है तो उसमें आप भाग लेकर श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा देवी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री गौर निताय की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।